मुश्किल में हूँ सरकार, मैं मुश्किल में हूँ।
एक बार शैतान एक चेले से मसलन पूछता है कि बता आज तूने क्या जुर्म किया। वो कहता है कि मैंने एक को शराब पिलवा दी। अच्छा बैठ जा। हाँ तूने क्या जुर्म किया है? मैंने एक को जिना में मुब्तला कर दिया। तुमने? दो आदमियों को लड़वा दिया। भाई तुमने क्या जुर्म किया? एक चेला बोलता है कि मैंने एक तालिबे इल्मे दीन मदरसे जा रहा था, मैंने उसको रास्ते में खेल में लगा दिया और उस दिन का सबक उसका मिस करवा दिया, नहीं जाने दिया। अब तो इबलीस अपने तख्त से खड़ा हो गया खुशी के मारे और उस चेले को सीने से लगा लेता है। वो बड़ी उसकी दाद थी। अब ये आग की मखलूक थी, ये आग में जल भुन गए कि हमने शराबे पिलवाई, जिना करवाए, लड़वाए बंदे, चोरियां करवाई, हमको लिफ्टी नहीं मिली और इसने कौन सा कारनामा कर लिया, बच्चे को मदरसे से एक दिन के लिए रोक लिया, तो इसको सीने से लगा लिया और इतनी मतलब इसको इज्जत दी शैतान ने। इन सब ने मतलब शिकायत की कि आखिर हमने भी तो कारनामे किए, हमको तो आपने कोई शाबाश नहीं दी और इस ने तो बाहर कोई सा कारनामा भी नहीं किया, इसको इतनी शाबाश दी, इसमें क्या राज है? तो शैतान ने कहा कि अच्छा मैं तुमको राज बताता हूँ। ऐसा करो, एक ऐसी बस्ती तलाश करो कि एक ही मोहल्ले में एक इबादत गुजार आबिद और परहेजगार भी रहता हो और उसी मोहल्ले में एक आलिम भी रहता हो। लोगों ने बस्ती तलाश कर ली। तो अब शैतान मुंह अंधेरे सुबह सादिक से बहुत देर पहले अपने चेलों को लेकर वहां पहुंच जाता है और सबको छुपा देता है कि देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुम खाली दूर से तमाशा देखना क्या हो रहा है। तो इतने में मस्जिद के करीब ये खड़े हुए थे लोग, तो इतने में परहेजगार आदमी आबिद और जाहिद और नेक आदमी जो आलिम नहीं था वो आस्तीने चढ़ाए मस्जिद की तरफ खिरामा खिरामा झूमता हुआ तहज्जुद के लिए आ रहा। तो शैतान ने रास्ता रोककर उसको सलाम किया, हाथ मिलाया और बोला कि वो बुजुर्गो एक मसला पूछना है। तो पूछो। तो शैतान ने उसको शीशी दिखाई छोटी सी। तो मसला ये है कि ये बताइए कि अल्लाह ताला क्या इस बात पर कुदरत रखता है कि इस छोटी सी शीशी में सारी दुनिया को समो ले। अब वो परहेजगार आदमी था बेचारा, नेक आदमी, लेकिन उसको इल्म नहीं था। तो उसने सर खुजाते हुए अकल को जोर देकर कहा कि मियां तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं, कहां इतनी सी शीशी, कहां इतनी बड़ी दुनिया, कोई इतनी बड़ी दुनिया भी कोई शीशी में आ सकती है जो अल्लाह ताला इसी में समोएगा। तो शैतान ने कहा बहुत बेहतर, तकलीफ माफ करना, उसको छोड़ दिया। फिर अब वो तुलुए आफ्ताब में थोड़ी देर रह गई तो वो आलिम साहब आस्तीन में चढ़ाए हुए तेजी से मस्जिद की तरफ आ रहे कि कहीं सूरज तुलू हो जाए और नमाज कदा ना हो जाए। शैतान ने फिर वो सलाम करके रास्ता रोक लिया। अल्लामा साहब एक मसला पूछना है, तो जल्दी पूछो, सूरज निकलने वाला। वही शीशी दिखाकर मसला पूछा कि क्या अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि छोटी सी शीशी में इतनी बड़ी दुनिया को समो ले। तो आलिम ने फौरन फरमाया कि शैतान मालूम होता ऐसा सवाल कर, खुदा की कसम शीशी तो बहुत बड़ी है, मेरा रब तो इस बात पर भी कादिर है के सुई के सुराख में ऐसी करोड़ों दुनिया समो दे। खैर वो आलिम साहब तो ये कहते हुए मस्जिद तशरीफ ले गए। अब शैतान ने अपने चेलों से कहा ये देखो तुम्हारे नजदीक जो कीमती सरमाया था वो आधी रात में जो नेक और परहेजगार और आबिद और इबादत गुजार निकला था तहज्जुद गुजार, अगर तुम कभी तहज्जुद के वक्त इसकी आंख लगा दो तहज्जुद ना पढ़ने दो, तुम समझोगे हमने बहुत बड़ा कला फतेह कर लिया और बहुत बड़ा कारनामा कर दिया, उसको तहज्जुद से महरूम कर दिया। तुम्हारे नजदीक वो था लेकिन वो चूंकि आलिम नहीं था, उसको इल्मे दीन नहीं था, आबिद जरूर था, इल्मे दीन नहीं था, जाहिल था, तो इसलिए उसको अल्लाह की कुदरत पर ईमान ही नहीं था। बेवकूफ को पता ही नहीं था कि कुदरत क्या होती है, इतना भी इल्म नहीं था, तो इसलिए वो तो अपनी जहालत की वजह से अपना ईमान बर्बाद कर चुका। कह दिया उसने कि अल्लाह ताला इस शीशी में दुनिया नहीं समा सकता, तो ये तो हो गया काफिर। अब भले वो टक्करें मारता रहे और अपनी पेशानी पर मेहराबे बनाता रहे और खूब तहज्जुद पढ़ता रहे, लेकिन ये तुम्हारे साथ हमेशा दोजख में रहेगा और ये जो निकला ना ये तुम्हारे लिए बड़ा खतरनाक था, ये आलिम था, ये तुम्हारे खिलाफ मुहिम चलाता रहेगा बराबर, तो इसलिए मैंने उसको सीने से लगाया था जिसने एक तालिबे इल्म को इल्मे दीन मतलब सीखने से एक सबक से उसको मतलब महरूम कर दिया ताकि मतलब इल्मे दीन वो ना पढ़ सकेगा। इल्मे दीन अगर ये पढ़ गया तो ये अपना मुखालिफ हो जाएगा और अपने खिलाफ मुहिम चलाता रहेगा। तो मेरे भाइयों आप भी समझ गए होंगे, इल्मे दीन अपनी जगह है और दूसरी इबादत जो है वो अपनी जगह पर, और सही तर बात यही है कि बगैर इल्मे दीन के कोई इबादत दुरुस्त हो ही नहीं सकेगी। अब मसलन कुरान पढ़े जा रहे हैं आप, रोज का एक कुरान खत्म कर लिया। जैसे यार लोग पढ़ते हैं बहुत, कई कई पारे पढ़ देते हैं, पढ़ते क्या ये खुद ही समझते हैं, न तलफ्फुज़ अदा होता है, न मखारिज अदा होते हैं, न कवाइद, न मद, न गुन्ना, न इख्फा, न इज़हार, कुछ भी नहीं। शायद मेरी इस्तिलाएं आपकी भी पल्ले ना पड़ी हो, बहुत सो बहुत हालात नागुफ्ता बे हो चुके हैं कुरान के मामले में बदकिस्मती से, तो कुरान पढ़े जा रहे हैं लेकिन कुरान सही पढ़ना नहीं सीखा। कुरान को सही पढ़ना सीखना ये इल्मे दीन है यकीन, और इल्मे दीन के बगैर कुरान सही पढ़ना मुमकिन नहीं। इसी तरह नमाज को ले लो, बगैर इल्मे दीन के नमाज सही पढ़ ही नहीं सकते आप। जब आपको पता ही नहीं है कि वुजू में कितने फर्ज हैं, वुजू किस तरह दुरुस्त होता है, कपड़े किस तरह पाक किए जाते हैं, आपको पता ही नहीं है वे नमाज कैसे पढ़ोगे आज। मतलब मजमे में मुसलमानों के खड़े होकर आप पूछ लीजिए कि भाई कपड़े पर बच्चे ने पेशाब कर दिया, बताओ कपड़ा कैसे पाक करेंगे, शायद कोई बता जाए तो बता जाए। मेरे ख्याल में ये आप माशाल्लाह हजारों मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे जवाब तलब नहीं कर रहा, अपने अपने मतलब जमीर से जवाब ले लीजिए कि मुझे कपड़ा पाक करना आता है या नहीं आता। जवाब मिल गया होगा, अब आप खुद देख लें कि कपड़ा पाक करना तो आता नहीं, वजू के फर्ज तो मालूम नहीं है, वजू किस तरह करना चाहिए ये भी नहीं पता, गुसल के फर्ज कितने हैं, गुसल किस तरह उतरता है मालूम ही नहीं, पानी किस तरह पाक रहता है, किस तरह नापाक हो जाता है। सही बात है कि बिल्कुल अब तो ये तसव्वुर मिटता जा रहा है, पाकी नापाकी का लोगों को पल्ले नहीं पड़ता कि पाकी नापाकी क्या, तो एक मसला थोड़ी है, हजार मसाए, लोगों को कुछ भी पता नहीं, इल्मे दीन से बिल्कुल बेबेरा। शैतान इस वक्त भी तालियां बजाकर अपने चेलों के झुरमट में मौज कर रहा होगा कि भले इलियास कादरी ये जोर लगा ले मेरे खिलाफ, इल्मे दीन नहीं, इल्मे दुनिया बिल्कुल, हर स्कूल, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी फुल, बिल्कुल नो एडमिशन, दुनिया के उलूम बिल्कुल यानी कि पावरफुल तरीके पर, इल्मे दीन खलास, कोई सीखने के लिए तैयार नहीं, वो तो कोई अंधा हो तो उसको हाफिज कुरान बना दो, निकम्मा दुनिया के काम का नहीं तो उसको बना दिया हाफिज कुरान, भाई अंधा है। अब मजे की बात है कि इतना मशहूर हुआ अंधे का हाफिज कुरान होना कि अगर कोई अंधा ऐसा हो कि जो अलीफ का बा भी ना जानता हो, कुरान बिल्कुल ना पढ़ा, उसको भी लोग हाफिज जी बोलने लगे, इन्हें जो दुनिया के लिए नकारा वो हाफिज है कुरान, अंधा है हाफिज जी। इसी तरह घर में शरारत करता है या लूला लुंजा है, अखड़ है, पढ़ने में वीक है, उसको डाल दो मौलानाओं के खाते में, दारुल उलूम में, भले उनको तंग करता, बाकी जहीन है उसको इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, अमरीका भेजो, आजकल कॉन्सेप्ट तो यही पाया जाता है हमारी किस्मत। तो इल्मे दीन से बिल्कुल बहुत ज्यादा दूरी है, कुछ भी नहीं पता, यकीन माने कुछ भी नहीं पता। हालांकि हदीस पाक में इरशाद हुआ, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम, इल्मे दीन का तलब करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। हजरत सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह तहरीर फरमाते हैं इस हदीस के तहत कि ये इल्म सीखना फर्ज है हर मुसलमान मर्द औरत पर, तो इससे मुराद कौन सा इल्म? फरमाते हैं कि इससे मुराद वो इल्म है कि जो मुसलमान पर जरूरत के मुताबिक फर्ज होता है। मसलन जब इंसान इस्लाम में दाखिल हुआ तो उस पर अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत का जानना फर्ज हो गया। अब बताओ हमको आता है अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात के बारे में, रिसालत की डेफिनेशन हमको कहाँ मालूम, नबुव्वत किसे कहते हैं, हमें क्या पता, ये तो जरूरी है ये इल्म के पता चलेगा अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात क्या है। जैसे उस बुद्धू के बारे में अभी आपने सुना, वो रात को तहज्जुद के लिए जा रहा था, उसको अल्लाह की ये सिफत कादिर होना पता ही नहीं था कि वो कादिर है, तो कादिर हर शय पर कादिर है, इन अल्लाह अला कुल्ले शयइन कदीर, और वो इल्म वाला था, उसने कह दिया कि सीसी बहुत बड़ी है, सुई की सुराख में भी दाखिल कर सकता है, एक नहीं करोड़, करोड़ नहीं अरब, अरब नहीं खरब, खरब नहीं करोड़ों खरब, खरबों खरब वो दाखिल कर सकता है, कोई मतलब हद ही नहीं है उसकी कुदरत की, वो जो चाहे कर सकता है। तो इल्म वाला था उसको पता था, जाहिल था उसको नहीं पता। तो अल्लाह की जात और सिफात के बारे में हमें तो मालूम नहीं है, हमें तौहीद और रिसालत के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो एक ये फर्ज हमारा छूट रहा है, हमें इसकी बिल्कुल कतई परवाह नहीं है, तो सवाल ही नहीं। इसी तरह फरमाते हैं और जब नमाज फर्ज हो गई, नमाज का वक्त आ गया, बालिग हो गया, तो अब उस पर यह फर्ज हो गया, जरूरी हो गया कि नमाज के अहकाम सीखे। नमाज के अहकाम में वुजू और गुसूल अंडरस्टूड है, तहारत ये अंडरस्टूड है कि वो भी सीखना होगा, नमाज किस तरह दुरुस्त होती है, किस तरह फासिद होती है, वो भी सीखना फर्ज हो गया। इसी तरह बालिग होने के बाद पहला रमजान आया है ना, रोजे जिस पर फर्ज हुए तो उस पर रोजों के अहकाम सीखना फर्ज हो गए, किस तरह रोजा दुरुस्त होगा, किस तरह रोजा फासिद होगा, टूटेगा, है ना, ये सब फर्ज हो गया। इसी तरह जो मालिक निसाब हुआ ने जिस पर जकात फर्ज हुई, उसके लिए जकात के अहकाम सीखना फर्ज हुए। तो अव्वल तो यहाँ जकात पूरी देता कौन है, अच्छा जो देता है वो मतलब यानी कि सही मानों में जकात कहाँ दे पाता है, और कौन सही जकात अदा करता है, वो इसकी तहकीक और इसकी लिप चिप में सही वादा नहीं पड़ता, देकर जान छुड़ा लेता। साहिल आया उसको दे के टाल दिया, कोई भी आ गया उसको उठा के दे दिया। दिल कांपता है कि लोगों की ज़कातों में क्या बनता हूँ। बहरहाल अल्लाह ताला हमारे हाले ज़ार पर रहम फरमाए। भाई भाइयों, इल्मे दीन की तरफ रग़बत कीजिए, सीखिए। दावत इस्लामी के इज्तिमात में आए तो इल्मे दीन के हुसूल का बेहतरीन जरिया है, और दावत इस्लामी के मदनी काफिलों में शिरकत करें कि इल्मे दीन हासिल करने का बेहतरीन जरिया। मदनी काफिले हमारे जाते हैं और सैकड़ों काफिले कराची से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे निकलते हैं, सिर्फ कराची नहीं पूरे मुल्क में जगह जगह काफिले जाते हैं। अफ्रीका में भी हमारे काफिले पहुंचे हुए हैं, बांग्लादेश जाते हैं, नेपाल जाते हैं, कहां कहां जाते हैं, दुनिया के कई ममालिक में दावत इस्लामी का काम हो रहा है।
सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
हाय ना फरमा।